369 नंबर के रहते हैं। 11-3-69 का पैकेट है, पेज 37। भगवान वाच, जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों की बुद्धि में कृष्ण नहीं आता है। कौन आता है? भगवान वाच माने कृष्ण बनाम ब्रह्मा भगवान नहीं है, बच्चों की बुद्धि में आ जाता है भगवान माने शिव बाबू, और कोई की बुद्धि में नहीं आता है, बच्चों की बुद्धि में आता है। बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। तो मूल बात है बाप का परिचय देना है, अम्मा का परिचय देना, ये मूल बात नहीं, मूल बात बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हमेशा आप उनको बच्चे समझो। और कोई को ये पता नहीं है कि वो बाप टीचर गुरु है, तुम बच्चों की ये पता है कि वो बाप भी है टीचर भी है और उसी एक रूप में गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं इस बात को, क्या कि वही एक रूप है जो बाप भी है वर्षा देने वाला, टीचर भी है एक्सप्लेन करने वाला, और गुरु भी है सदगति करने वाला या साथ ले जाने वाला। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। क्या याद रहे? कि एक ही रूप से बाप भी है टीचर भी है और उसी रूप से सदगति करने वाला है। तुम उनको भूल जाते हो, उनको भूल जाते हो जो बाप भी है टीचर भी है सतगुरु है। इनको नहीं भूल जाते हो, इनको भूल जाते हो, इनको माना ब्रह्मा को और उनको माना जो भविष्य में दूर है, बता दिया ना, उनको माना भविष्य में बाप टीचर सतगुरु के रूप में पार्ट बजाने वाला है, उनको भूल जाते हो। फिर लौकिक देह के संबंधी आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सभी निकल जाने चाहिए। तुम कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, क्या कहते हो? तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। अगर दूसरे कोई याद आते हैं तो गोया तुम दुर्गति को पाते रहते हो। एक जो बताया बाप टीचर और गुरु, वो एक ही रूप है, और उसे एक के अलावा अगर कोई दूसरा याद आया तो क्या पाया, कहाँ पाओगे, कहाँ उसकी गति होगी, दुर्गति। ये तो आत्मा की दुर्गति होती है। कैसी होती है दुर्गति? दुह माना दुष्ट और गति माना चाल। आत्मा की चाल दुष्ट हो जाती है अगर उसे एक रूप को याद न कर कोई दूसरे रूप को याद किया तो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतगुरु में जा रहे हैं, कहेंगे हम सदगति में जा रहे हैं। कैसी गति में जा रहे हैं? सच्ची गति। आत्मा की सच्ची गति क्या है? सच्ची चाल क्या है? गति माना चाल। सत्य चाल है जो बाप का संकल्प सो हम बच्चों का संकल्प, जो बाप का मनन चिंतन मंथन का ज्ञान, बाप के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे अंदर भी रमण करने लगे। बाप के संकल्प से एक भी संकल्प हमारा विपरीत न चले तो वो हुई सदगति। तो ऐसे नहीं कहेंगे तुम हम सतयुग में जा रहे हैं, पहले कहाँ जा रहे हैं, पहले हम सदगति में जा रहे हैं कि पहले सतयुग में जा रहे हैं, पहले सदगति में जा रहे हैं, यानी हमारे पहले मन बुद्धि की चाल गति माना चाल सत्य हो जाए। सत्य तो एक परमात्मा ही है, इस दुनिया में और कोई अभी सत्य नहीं है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे सत्य गति को पाएंगे जरूर। देह अभिमान में हो तो दुर्गति हो जाती है। बाप में तो देह अभिमान है ही नहीं, देह ही नहीं है, तो बच्चों में भी देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। जब दुर्गति हो जाती है तो कब नीचे कब ऊपर चढ़ते उतरते रहते हो, अप एंड डाउन होती रहती है स्टेज, कब आगे बढ़ते हो कब पीछे हटते हो, कब आत्मा में उमंग उल्लास आ जाता है और कब डल हो जाती है। देह अभिमान में आने से नीचे उतरते हो, अगर आत्मा अभिमानी होकर के रहो बाप के पास कौन से बच्चे रह सकेंगे। जो पूरे आत्माभिमानी होंगे वही बच्चे बाप के पास रह सकेंगे, नहीं तो बीच में क्या होगा, बीच में टूट पड़ेंगे या भाग जाएंगे। देह अभिमानी होने से तुम ऊपर में चढ़ते हो, देही अभिमानी होने से, देह अभिमान में आने से नीचे गिर जाते हो, बहुत देह अभिमान में आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। सारा मदार याद पर है, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं, चलते चलते थक जाते हैं नीचे ऊपर होते होते। ज्यादा सीढ़ी उतरेंगे ज्यादा चढ़ेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे। कहते हैं बाबा ये होता है, हम याद भूल जाते हैं, देह अभिमान में आने से पीछे हटते, कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं। सारा मदार याद पर है, क्या देह अभिमान में आने से पाप कैसे, कुछ न कुछ कुछ न कुछ बाचा गई उलट सुलट बोल देंगे, बाजी से बाप की ग्लानी हो जाए तो पाप करते रहते हैं। सारा मदार याद पर है, याद से आयु बढ़ती है, याद की यात्रा ही मुख्य है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है, ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे तुम्हारा नुकसान बहुत होता है। इससे अगर बुद्धि में ज्ञान भी नहीं है और योग माना बाबा से लगन लगाव प्रीति नहीं है, बहुत नुकसान हो जाता है, बहुतों से मेहनत तो पहुंचती नहीं है। वो लोग गुरुओं की पिछाड़ी कितना पढ़ते हैं, कौन लोग वो भक्त लोग, वो मनुष्य गुरुओं की पिछाड़ी कितना पढ़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कहती है गुरु तो जन्म जन्मांतर हमने किए और ही नीचे गिरते चले आए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने गुरु ने किया हो, वास्तव में गुरु तो एक ही होता है सदगति के लिए, जो सदगति करता है वो ही गुरु, बाकी गुरु कहेगा, बाकी सभी हैं दुर्गति के लिए। एक सदगुरु निराकारी स्टेज में रहने वाले के अलावा बाकी सब सब मनुष्य गुरु दुर्गति करने वाले हैं, बुद्धि की चाल को खराब कर देते हैं झूठी बातें सुना करके। ये बातें तुम्हारे लिए भी नंबरवार समझते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते ही हैं, पढ़ाई से समझा जाता है ये कहाँ तक है, किस सर्विस कैसी कैसी सर्विस करते हैं, शिव बाबा का ही परिचय देना है, ये भी तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद का बाप से मिलता है, इनसे तुमको वर्षा नहीं मिलता है, तुमसे इन ब्रह्मा से तुमको वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा कौन सा है? सुख शांति का वर्षा, शांति धाम का वर्षा, सुख धाम का वर्षा तुमको इनसे नहीं मिलता है। इनसे माना ब्रह्मा से नहीं मिलता है। किससे मिलता है? बाप से ही मिलता है। यह माँ बाप तो कोई काम के नहीं। यह काम का है क्योंकि इनमें बाप आते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई ने बाबा मम्मा प्रवेश कर सकती है, सब में नहीं, तुम्हारे में भी कोई कोई में बाबा मम्मा प्रवेश कर सकती है। मुख्य है ही मात पिता और तुम बच्चे, ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान है, उनसे हमको वर्षा लेना है। इनसे क्यों नहीं? किसके तन में बैठ के बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहा है। तो जब बाजू में ही बैठा हुआ है तो दूर क्यों कर दिया वर्षा देने वाले को? जरूर भविष्य का पार्ट है उसी ज्योति बिंदु का पार्ट जो ब्रह्मा के तन में बैठा बोल रहा है। क्या कहता है? उनसे यह वर्षा लेना है, माने वर्षा इनसे नहीं मिलेगा। बाप को तो याद करना होता है ना, ये कोई याद करना है भी निराकार शिव बाबा, पर क्यों ही तुम्हें ऐसे देते हो? कैसे कि वो निराकार है? निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं, लेकिन बिंदु की प्रैक्टिकली स्टेज में रहने वाला है। वो तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? फिर भला वर्षा कैसे पावेंगे? क्या सबसे वर्षा पावेंगे? सर्वव्यापी है तो सब बाप हो गए, लेकिन सबसे तो वर्षा नहीं मिलता। बाप तो एक ही होता है। न वर्षा पावेंगे न पावन बनेंगे। सर्वव्यापी होगा तो पावन बनेंगे? पावन बनेंगे कि पतित बनेंगे? सर्वव्यापी होगा तो सर्वव्यापी होने से तो विविचार हो जाएगा, विविचार दोष लगने से पतित बनेंगे पावन बनेंगे? और ही पतित और ही नीचे गिरते चले जाएंगे, क्योंकि अनेक का संग हो गया। भीतर भीतर सबको भगवान मान करके उनके उनके नजदीक पहुंचने की बात हो गई तो नीचे गिरते जाएंगे। अगर एक व्यापी समझेंगे तो अब विविचारी बनेंगे, पावन बनेंगे। तो सर्वव्यापी से न वर्षा पावेंगे न पावन बनेंगे। कैसे पावन बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मनमना भव, मुझे याद करो, ये कोई जानते नहीं है। कृष्ण को भी वास्तव में सभी नहीं मानते हैं। वो मोर मुकुटधारी प्रिंस यहाँ कैसे आवेगा? ये तो है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी होगी, सहज भी बहुत है। बाप से वर्षा लेना है तो बहुत सहज है, बच्चे डिफिकल्टी क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। डिफिकल्टी कब होती है? बाप से प्रीति बुद्धि नहीं है तो डिफिकल्टी लगती है। बाप ने दुर्गति और सदगति का राज भी समझाई दिया है। इस समय है सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य माता दुर्गति में ले जाती है, ये है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। तो हर एक मनुष्य अपन से पूछे, हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं? हम वासी कहाँ के हैं? सत्युग है कहाँ? परंतु बंदर बुद्धि ये कुछ भी समझते नहीं है। सत्युग त्रेता को भी कई लोग कल्पना समझ लेते हैं। अनेक मत है ना, अनेक मत से दुर्गति होती है। ये ढिंडोरा पिटवाते रहो, एक सदगुरु निराकार द्वारा सदगति। किसके द्वारा? निराकार द्वारा, माना सदगति का मीडिया वो स्वयं बनता है, ऐसे नहीं ब्रह्मा बनता है। एक सतगुरु निराकार द्वारा सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं द्वारा दुर्गति, चाहे वो ब्राह्मणों की दुनिया के हों और चाहे वो बाहर की दुनिया के हों। कौन? मनुष्य गुरु। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है, लिख लिख करके हर एक जगह टांग दो। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ही ले जाते हैं, एक ईश्वर ही सभी मनुष्यों को सदगति देते हैं। तुम तो शुभ बोलते हो, बाप की महिमा करते हो, वो सबका बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया, बल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त कराते, अभी से नरक का अंत होने का है, मेहनत तो करनी पड़ती है समझाने में। एरोप्लेन से पर्चे भी गिराए सकते हैं, हम तो बाप की महिमा करते हैं, वो एक बाप ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, तो दुर्गति देने वाला कौन है? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, आधा कल्प है नरक। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, रावण की उल्टी मत से ही नीचे गिरते हैं। ऐसे नहीं कि रावण कोई डायरेक्ट दुर्गति कर देता है, नहीं, क्या करता है? उल्टी मत देता है, उल्टी मत से नीचे गिरते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, फिर गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? इससे और ही अच्छी दुर्गति हो जाती है, इससे गंगा से, गंगा को पतित पावनी माना तो और ही दुर्गति हो जाती है। क्यों? गंगा तो भगवान के सर पर चढ़ी हुई है, दुर्गति कैसे देगी? अरे सर पर चढ़ी हुई है तो दुर्गति कहाँ देती है? जो बहुत सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप का घर बार धंधा धोरी संभालते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो बाप उनको प्यार से कूल्हे पर चढ़ाए लेते हैं, सर पर चढ़ाए लेते हैं। चंद्रमा भी सर पर चढ़ा हुआ, गंगा भी सर पर चढ़ी हुई है, पार्वती नहीं चढ़ी हुई है। तो ज्यादा सेवादारी है उनको बाप बहुत याद करते हैं, बहुत मान देते हैं। तो गंगा दुर्गति वाली हुई है सदगति वाली हुई? सर पर चढ़ी हुई है बाप के तो जरूर है उस समय सदगति देने, क्योंकि बाप से कनेक्शन है। और जब सर से नीचे उतर जाती है, औरों से कनेक्शन टूट जाता है, नदी नाले से संपर्क संबंध टूट जाता है, तो नदी क्या बन जाती है? नाला बन जाती है। बाप से संबंध संपर्क जुटा हुआ है प्रैक्टिकल में तो गंगा पतित पावनी, और अगर संबंध टूटा हुआ है, औरों से जुड़ा हुआ है, बाप से टूटा हुआ है, तो नदी नाला बन जाती है। इसलिए बोला कि गंगा से और ही उल्टी दुर्गति हो जाती है अगर पतित पावनी समझा तो। सीढ़ी में भी कितना लिखे और कितना लिखे, कितना लिखा हुआ है, मुख्य बात तो एक ही है, हम बाप से विश्व के मालिक बन रहे हैं। इस पुरानी शरीर से भी मुंह निकलना है, अगर बगुले इकट्ठे होंगे तो मुंह निकलेगा कैसे? इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ बगुलों के साथ सभी है बगुले, एक है हंस, इसे कलयुग की दुनिया में तो सभी बगुले हैं, एक है हंस, तो क्या इशारा मिला? हंस बगुले इकट्ठे न रह सके, यही तो बात बता रहे हैं। एक है हंस, बाकी सभी हैं बगुले, हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, तो मतलब क्या हुआ है? हंस बनेंगे कैसे? बगुलों के साथ रहे पड़े हैं। हाँ, हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? क्योंकि संग का रंग तो उनका लगता रहेगा, तो वो बगुले उनको चुग चुग करते रहते हैं। हर एक सरकमस्टेंसेस भी देखे जाते हैं, पोता मिल पूछा जाता है,
तुम कितना कमाते हो? हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आते ही कर सकते हो, तो फिर झंझट में क्यों फंसे? काहे के लिए, काहे की झंझट में है? कौन सी झंझट में? धंधा दोरी की झंझट में, जिसमें जिस दुनियावी धंधा दोरी में बगलों का संग करना पड़ता है। क्योंकि पहले भी मुरली ने बताया, किसी के पास इतना पैसा है कि ब्याज मिलता रहे, रोटी तो पर खाते रहे, तो क्यों झंझट में फंसे? पेट कोई बहुत थोड़े ही खाता है, कितना खाता है? पेट तो दो ही रोटी खाता है। बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए बहुत काफी है। अच्छा महंगाई भत्ता जोड़ दे, ये तो 68 की वाणी है, महंगाई भत्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना, महंगाई भत्ता जोड़ दे। एक पाव आटे में कितना खर्चा आता है? 2 रुपया। नमक डाल दो, जिंदा रहेंगे कि नहीं? मर जाएंगे, जिंदा जरूर रहेंगे। तो उस समय बोला 30 रुपया, 1 रुपया, अभी महंगाई जोड़ दो 2 रुपया। तो बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए, 169 की वाणी, 68 में ओरिजिनल चली थी, 30 रुपया पेट के लिए बिल्कुल काफी है। 1 रुपया रोज, बल्कि होना तो चाहिए 8 आना है। हाँ पाव भर आटा है, उस समय तो आटा ही 2 रुपया था, 1.5 रुपया। सिर्फ दूध और चाय की आदत छोड़ दें, आटाने में भी काम चल सकता है। फ्रूट चाहिए, यह चाहिए, तो फिर पैसे भी चाहिए। पेट के लिए 2 रोटी 8 आना काफी है। कोई सपूत बच्चा 1 दिन रोटी बनाए, खाए और दिखावे, क्या कहा? 69, 68 में कोई सपूत बच्चा ऐसा निकले जो इतने में ही अपना खर्चा निकाल के दिखाए? एक सब्जी सस्ते में सस्ती बनाओ, क्या सस्ते में सस्ती का मतलब ये नहीं सड़ी गली उठा लाओ, सड़ी गली सब्जी की बात नहीं, मार्केट में जरूर कोई न कोई सब्जी सीजन की सस्ती होती है, है? हाँ। तो एक सब्जी सस्ते में सस्ती बनाओ और 2-3 बेले के लिए एक ही सब्जी बनाओ। ऐसे नहीं कि अभी एक सब्जी तो दूसरे टाइम दूसरी सब्जी, तीसरे दिन दूसरी सब्जी, फिर तो सस्ते में सस्ती सब्जी से काम नहीं चलेगा। मार्केट में तो एक ही सब्जी सस्ती होती है और तुम्हें रोज नई सब्जी चाहिए, तो सस्ती सब्जी तो नहीं ला सकेंगे, फिर तो 2-4 8 दिन के लिए लाएंगे तो 8 सब्जियां लानी पड़ेंगी, फिर तो ये नियम चल नहीं सकेगा। तो मार्केट से सस्ते में सस्ती सब्जी इकट्ठी उठा लाओ, है? और जब तक दूसरा मार्केट लगे तब तक वो ही सब्जी। एक ही सब्जी बनाओ, रोटी बना दो, इसको बासी थोड़े ही कहेंगे। मुसाफिरी पर 4-4 दिनों का भी भोजन ले जाते हैं ना, पेट में तो सभी ठंडी हो जाती है। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई भी बात पर हिल जाने से फिर कुछ भी हो सकता है। नेचर क्योर वाले कच्ची सब्जी खाने पर हिल जाते हैं, पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, बस रोटी खाई और कोई फुर्रा नहीं। फिर भी प्रण कर देना चाहिए हमको तो एक बाप को याद करना है, जिससे सभी विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा आदि नहीं करना है, क्या एक बाप की याद में बैठ जाएंगे हाथ पांव बांध बांध करके कोई धंधा नहीं करेंगे? धंधा आदि नहीं करेंगे तो फिर 8 आना भी कहां से लावेंगे? कौन सा धंधा है? जिस्मानी धंधा, जिस्मानी धंधा ब्राह्मण नहीं करते हैं क्या है? ये ज्ञान आदि सुनाते हैं तो उसमें उनको पैसा नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है? मिलता है ना, तो धंधा तो वो भी। तो धंधा आदि नहीं करेंगे तो फिर आठ आना भी कहाँ से लावेंगे? भीख तो नहीं मांगनी है, यह तो घर है। सभी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना के सर्विस नहीं करते हैं, मुफ्त में खाते हैं, तो वो गोया भीख पर चलना हो गया। जैसे उनको बाबा के यज्ञ से भीख मिल रही है, फिर क्या होगा उसका रिजल्ट? है भीख मांगने की शूटिंग हुई तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर 21 जन्म सेवा करनी पड़ेगी। जिसकी भीख पर चले हैं उसकी क्या करनी पड़ेगी? दास दास ही बनकर के रहना पड़ेगा। राजा से लेकर रंक तक यहाँ भी हैं तो वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुखी ही सुख है और यहाँ सदैव दुख है। नंबर वार पोजीशन तो होती है ना, तो बाप से पूरा योग रखना है। ये क्या बोल दिया? पूरा योग रखना है, सर्विस भी करनी है। अगर लगाव है बाप से, योग मन लगन लगाव, अगर बाप से अटैचमेंट है तो बाप की सेवा से भी धंधे धोरी से भी अटैचमेंट होना चाहिए। पूरा योग रखना है, दिल से पूछना है हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं कि ईश्वर की सेवा करते हैं। योग ईश्वर से रखना है कि यज्ञ से रखना है? अरे इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है? रुद्र का ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, नारायण ज्ञान यज्ञ, ऐसे नाम नहीं दिया। विष्णु ज्ञान यज्ञ, क्या नाम दिया है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो उस यज्ञ की संभाल भी करनी चाहिए। कहते हैं ना ईश्वर के पास सभी बनाया बनाया बना बनाया हिसाब, उनको साक्षी देखा जाता है। इस चलन से क्या पद पावेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। श्रीमत पर चलने से हम कितना ऊंच पद पाते, न चलने से फिर कितना कम पद हो जाएगा, ये समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं ना शांति देवा। इनको बेहद के बाप को शांति देवा, अरे देवा है कि भगवान है? शांति देने वाला भगवान है या देवा है? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, सुखधाम की स्थापना, और शंकर द्वारा आश्रु दुनिया का विनाश और शांति आ जाएगी। तो शांति देवा कौन सा हुआ? कहते भी हैं शांति देवा, कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकता है। जरूर वो चित्र कैसा होगा शांति देवा का? चैतन्य होगा ना। बाप कहते हैं तुम्हारा सुधर्म ही शांत है, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो ना, कहते हो शिव बाबा हम शांति धाम में जाना चाहते हैं, हमको शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वो तो है विस्थापन करने वाला है तो क्यों नहीं देगा? परंतु अगर उनको याद ही नहीं करेंगे, उनको मानेंगे ही नहीं, तो फिर देंगे कैसे? किनको? उनको माने किनको? शिव बाबा को। शिव को तो सभी मानते हैं। हाँ, जो भविष्य में पास्ट प्रैक्टिकल चलता है, उनको मानेंगे ही नहीं तो देंगे कैसे? शांति का सागर तो एक ही बाप है। एक ही का मतलब क्या? एक बिंदु है? एक ही बाप का मतलब कोई एक ही रूप है, दूसरा कोई रूप नहीं है। शांति का सागर तो एक ही बाप है। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति की बात, फिर सुख में आना। पहले पहले
इशारा दिया कि जो बाद के जन्मों में आने वाली आत्माएं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्वधर्म निधनम से या पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म दुखदायी होता है। दूसरे के धर्म में कभी सुख नहीं मिल सकता, धक्के खाते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, पौना हिस्सा तुम्हारे धर्म में सुख है, बाकी एक चौथाई दुख है, और धर्मों में आधा आधा, और तुम्हारे लिए पौना हिस्सा सुख। लेकिन किनके लिए? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए। देरी से जो आने वाले हैं उनको सुख मांगना आवेगा ही नहीं। क्या यानी जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो डायरेक्ट बाप से आकर के सुख का वर्षा ले ही नहीं सकेंगी, उनको मांगना ही नहीं आवेगा। है बिंदु से सिर्फ बिंदु से न शांति मिलती है न सुख मिलता है, वो भी साकार में आकर शांति देवा बनता है और सुखदाता भी बनता है। तो जिनको सुख मांगना आवेगा ही नहीं वो मुक्ति ही मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो निज चाहिए, शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति धाम। पहले तो सभी मुक्ति में जावेंगे, वहां तो सुखी होगा, कहां स्वर्ग में, मुक्ति धाम में तो सुख नहीं होगा। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाए फिर जीवन मुक्ति में आवेंगे, और बाकी सभी चले जाएंगे मुक्ति धाम। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी का हिसाब किताब चुकतू होता है। क्या हिसाब किताब? कर्मों का 63 जन्मों के हिसाब किताब जिसके जिसके साथ हैं वो साथ चुकतू होंगे। कयामत, जो जिसकी मत पर 63 जन्मों में चला होगा वो हिसाब किताब यहाँ चुकतू होगा। बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं है। विनाश के टाइम में मालूम पड़ता है जब आत्माएं भटकती हैं बुरी तरह से, तब बुद्धि में उनके ये खटकता है आखिर असली मत क्या है, कौन सी मत पर चले। तो नाम क्या रख दिया उस टाइम का? कयामत। सभी का हिसाब किताब चुकतू होगा। जानवर का भी हिसाब किताब चुकतू होता है ना? कोई तो राजाओं के पास रहते हैं, उन जानवरों की कितनी संभाल होती है? क्या हाँ? यहाँ पढ़ाई किसको रहे हैं? जानवरों को पढ़ाए रहे हैं कि मनुष्यों को पढ़ाए रहे हैं? हाँ पढ़ाए तो रहे हैं मनुष्यों को, ब्राह्मण तो मनुष्य ही होते हैं, लेकिन बताया कि कोई जानवर बुद्धि होते हैं, उन जानवर बुद्धि में भी ऐसे ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं सकते आखिर क्या मत है, असली मत क्या है। तो नहीं समझ सकते हैं तो कौन सी बुद्धि हुए? जानवर बुद्धि। लेकिन कोई कोई जानवरों में भी ऐसे होते हैं जो राजाओं के यहाँ पलते हैं, और कोई जानवर ऐसे होते हैं जो गरीबों के यहाँ पलते हैं। तो ज्यादा सुखी कौन रहेंगे? जो बड़ा राजा के यहाँ पलेगा वो तो ज्यादा सुखी रहेगा ना। अब यहाँ तो सब क्लियर हो जाता है कि राजा बनने वाले कौन है, बड़े से बड़ा राजा कौन है, छोटे राजा कौन है, और दास दासी कौन बनने वाले हैं, और प्रजावर्ग में कौन से जाने वाले हैं। तो रेस के घोड़े होते हैं उनकी देखो कितनी संभाल होती है। वो तो स्थूल घोड़ों की बात हुई, जानवरों की बात कहाँ की है? है? यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी घुड़सवार है, पुरुषार्थ में दौड़ने में बहुत तीखे है, फट से कभी पीछे हटते हैं कभी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी ना, धनी जरूर तैयार करेगा। तो ये भी ड्रामा में नूद है क्या? कोई कोई जानवर बच्ची भी ऐसे होते हैं जिनकी बहुत संभाल की जाती है, है? ये कंट्रास्ट बताया है, कोई महारथी हाथी सवार उनको हाथी बताई दिया, कोई घोड़सवार उनको घोड़ा बताई दिया, कोई प्यादे पैदल ही दौड़ने वाले उनको कोई साधन ही नहीं दिया जाता, कोई महावीर। तो ये सब ड्रामा में नूद है, वहां तो ये सब होते ही नहीं है, ये रेस आदि बाद में शुरू होती है। तो ये सारा बना बनाया खेल है सृष्टि के आदि में अंत को भी तुम अभी जान गए हो, आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम ही विश्व पर राज्य करते रहेंगे, हरेक समझ सकते हैं हम यह बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं नहीं करते, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि बाप मिला है, बाकी तो सभी हैं अंधे की औलाद, अंधे वो तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, कौन है? जो अंधे की औलाद अंधे हैं, अंधे को फॉलो करने वाले हैं, वो क्या करेंगे? वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, लड़ते हैं, लड़ने झगड़ने में ही अपनी बुद्धि का सारा पावर खत्म कर देंगे। और तुम हो सोजरे की औलाद, बाप तो तुमको लड़ने झगड़ने नहीं देगा, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे विनाश के लिए। देखो क्या क्या सुनाते रहते हैं, आग के बम्स बनाते रहते हैं। यहाँ कौन से बम्स है? ग्लानी के बम, बड़ों बड़ों की जब ग्लानी की जाती है तो ग्लानी सुनने वाले बहुत से ऐसे होते हैं कि वो पीछे भी पड़ जाते हैं, प्रूफ निकाल लेते हैं, प्रूफ निकाल करके अखबारों में डिक्लेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है फिर? आग बरसती है चारों तरफ, आग बरसेगी तो बम्बोर को आग कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई नहीं रहेगा, ढेर के ढेर बम्स बनाते रहते हैं, उनमें गैस पॉइजन ऐसे डालते हैं जो हवा चलने से ही मनुष्य खलास हो जाए। बड़े बड़े महारथियों के ऊपर जिनकी श्रद्धा बैठी हुई है, है तो सब मनुष्य गुरु ना, कमजोरियां तो सब में भरी हुई हैं कि कोई निर्विकारी देवता बन गया। तो बड़े बड़े महारथी जिनके ऊपर अंधश्रद्धा बैठी हुई है, उनकी जब ग्लानी के बांब फटेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? जिनकी श्रद्धा बैठी हुई है वो सब उखड़ पड़ेगी। तो गैस पॉइजन ऐसी डालते हैं जो हवा चलने से ही मनुष्य खलास हो जाएगा। जैसे हवा उड़ती है तो गैस चारों तरफ फैलती है, वो ग्लानी चारों तरफ फैलेगी और जो उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखने वाले हैं वो सब टूट पड़ेंगे। मौत तो सामने खड़ा हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो ले लो, अभी मेहनत करो, टू मच धंधा आदमी मत जाओ। क्या कहा? धंधा भी उतना ही करो जिससे पेट पूर्ति हो जाए, पेट भरा रहे, बाकी तो बाप की याद से ही पावर सारी मिलती है। कितना चिंतन रखना पड़ता है, बाबा ने इनको कैसे छुड़ा दिया। बड़े बड़े व्यापारी भी जेल में जाते रहते हैं, आगे जेल से कितना डरते थे, आगे लोग जेल में जाने से डरते थे और अभी अभी तो डरते ही नहीं, कहते कि यहाँ तो और मुसीबत है पेट का धंधा जुटाने में, वहां तो आराम से बैठ के खाएंगे। है? आगे तो जेल में जाने से डरते थे, तो ये छीछी दुनिया है ना। अभी तुम बच्चों को बाप को याद करना है तो विघ्न विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले में? बहुत ही प्यार से याद करना है, ये देखने से ही दिल खुश हो जाएंगे। ये हमारा अहम ऑब्जेक्ट है, बल पूजा करते थे परंतु ये थोड़ा ही पता था कि हम यह बन सकते हैं। क्या जिनको देखने से दिल खुश हो जाती है लक्ष्मी नारायण को, वो हम बन सकते हैं ये थोड़ा ही पता था पहले। कल पुजारी आज पूज्य बन रहे, बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये सभी खत्म होने का है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में से इस बात की ही महिमा गाती रहना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, तुम जानते हो वो हम सभी आत्माओं का बाप है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते थे। वो परम धाम का रहने वाला है। कौन से धाम का? जो परे से परे स्टेज वाला स्थान है, परे से परे स्थिति वहां रहने वाला है, उसको क्रॉस कोई नहीं कर सकता उसकी स्थिति को, इसलिए तो उनका चरित्र भी है और चित्र भी है। क्या चित्र है? एक चित्र ऐसा दिखाया जाता है योग युक्त स्टेज में जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट उसको उसकी निराकारी स्टेज को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ना आया होता तो चित्र क्यों होता? क्या अगर इस सृष्टि पर ही ना आया होता तो शंकर का चित्र क्यों होता? कहते हैं ना, वो तो सूक्ष्म बतनवासी है, शंकर तो यहाँ आता ही नहीं, माने शंकर यहाँ होता ही नहीं। बाप कहते हैं अगर ना आया होता तो चित्र क्यों होता, कौन आया होता? शिव बाप अगर शंकर में ना आया होता तो चित्र कैसे बनता? शिव जयंती भी मनाते हैं ना, तो जयंती माना जन्मदिन, जन्मदिन साकार का मनाया जाएगा या बिंदु आत्मा का मनाया जाएगा? आत्मा कोई जन्म लेती है क्या? गर्भ में भी आत्मा प्रवेश करती है तो जन्मदिन मनाया जाता है क्या? प्रवेश करने से? प्रवेश करने से थोड़ी मनाया जाता, जरूर कोई साकार शरीर के द्वारा बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो जन्मदिन मनाया जाता। तो परमात्मा भी कोई साकार शरीर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है तो जयंती मनाती है। उनको कहा जाता है परमात्मा, बाकी तो सभी को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य माने मनन चिंतन करने वाले मनु की औलाद, मनु माने मन, परमात्मा की भी तीन शक्तियां हैं मन बुद्धि और संस्कार, आत्मा की भी तीन शक्तियां हैं, परमात्मा की जो तीन शक्तियां उनके नाम रखे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, मन रूपी ब्रह्मा, शंकर रूपी बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र और विष्णु रूपी परिवर्तन शक्ति, संस्कार शक्ति जो संस्कारों को परिवर्तन कर देती है। तो वो है परमात्मा और बाकी सभी है मनुष्य, मनुष्य माना मनु की औलाद, आदि सनातन एक ही देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, भक्ति मार्ग में तो जो भी उपाय आदि करते हैं, साधना आदि करते हैं, उपासना करते हैं, उनका अर्थ कुछ भी नहीं होता है। अब तुम बाप की स्तुति क्या करेंगे, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही गणेश हो, तुम ही हनुमान हो, तो ये ग्लानी हुई या स्तुति हुई, तुम ही ठिक्कर बित्तर हो, कुकर सुकर हो, सारे अवतार गिनाए दिए, भगवान को जानवर भी बताए दिया, जानवरों को अवतार भी बताए दिया, कितनी ग्लानी करते हो, बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार यह भी अपकार होना ही है, फिर मैं आकर के सर्व का उपकार, सर्व का सदगति, सर्व की सदगति करता हूँ। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कच्छ मच्छ अवतार कहना ये कितनी ग्लानी है, कि कच्छ का रूप धारण करके आया, मगरमच्छ का रूप धारण करके आया, अब कच्छ मच्छ जैसे जानवरों में भी परमात्मा प्रवेश करेगा क्या। जब ऐसी ग्लानी करने लग पड़ते हैं तब मैं आता हूँ, तब आता हूँ। कच्छ अवतार मच्छ अवतार ये बता लेते, बताने लग पड़ते हैं कि कच्छ भी अवतार हो गया भगवान का, कच्छ मन कछुआ, कछुआ क्या करता है, उसकी पीठ बहुत मजबूत होती है क्या, भगवान ने उसको इतनी ताकत दे दी ब्रह्मा के तन में आकर के, तो उसकी पीठ बहुत मजबूत हो गई, उसकी पीठ पर लठ बजता रहे कोई उसका असर नहीं होगा। और विशेषता क्या होती है, उसके ऊपर पीठ पर ज्ञान के डंडे पड़ते रहे उसको कोई असर नहीं होता, दूसरी आत्माएं थोड़ी हिल डुल जाएंगी लेकिन वो हिलता डुलता नहीं। कच्छ अवतार, कछुए का अवतार, इसमें विशेषता और क्या होती है, कर्म इंद्रियां समय के आए से बैठ जाएगा पीठ ऊपर करके, तो ये उसकी विशेषता होती है कर्म इंद्रियों को समेटने की, उस विशेषता के आधार पर भगवान बन के बैठ गया। और मच्छ अवतार, मछली का अवतार, माछला मगरमच्छ, और छोटी छोटी सब मछलियों को निगल जाता है और रहता कहाँ है, पानी में जब तक है तब तक उसकी जिंदगी है। कच्छ मच्छ अवतार की पानी में ही जिंदगी है, माने आश्रम के ज्ञान जल के वातावरण में जब तक डूबा हुआ है तब तक वो ज्ञान में चलेगा, भगवान को मानेगा। और जिस दिन आश्रम के वातावरण में से निकल के बाहर कर दिया गया उसका क्या हाल होगा, वो ज्ञानवान सब छोड़ छाड़ देगा, मर जाएगा, तो भगवान को कठिन मत्स्य अवतार कहना ये कितनी ग्लानी है। अब ऐसी ग्लानी करने लग पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। तो अभी वो ग्लानी शुरू हो गई कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? ऐसे कच्छ मच्छ अवतार जो गंध भरी मछलियों को खा जाते हैं, सेंटर के सेंटर उड़ाए देते हैं, उनको भी भगवान मान करके बैठे हुए, उनकी श्रीमत को भगवान की मत समझते हैं। जब ऐसी ग्लानी हो पाती है तब मैं आता हूँ। और ये बातें भी बाप ही समझाते हैं और कोई समझाए भी नहीं सकता। क्या कि शास्त्रों में ये कच्छ मच्छ अवतार किसकी यादगार है? तो मेरी कितनी ग्लानी करते हो, ये ग्लानी तुम फिर भी करेंगे? क्या इतना समझाया, इतना शूटिंग का चक्कर भी समझा दिया, फिर भी क्या होगा? ये ग्लानी तुम फिर भी करेंगे, ड्रामा है ना? है? अंत में कुल कितने पहचानेंगे? है? सिर्फ 8 ही पहचानेंगे, बाकी सब ग्लानी करने वालों की लिस्ट में आ गए। अभी मैं फिर आया हूँ पावन दुनिया स्थापन करने। ये है ही हार जीत का खेल। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है जिसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज भी बाप बिगड़ कोई नहीं समझा सकता। मनुष्य मत तो अनेक निकलते रहते, मानव मत ही दुर्गति को प्राप्त कराती है, देवता मत तो हमको मिलती ही नहीं, देवता मत देते ही नहीं है। बाकी है सब मनुष्य, अभी तुमको और कोई की भी याद नहीं करनी है। आत्मा अपने बाप को ही याद करती रहे, मेहनत करनी चाहिए, जैसे भक्ति भी मेहनत करते हैं। तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत, भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं 100 माला फेरो, फिर कोठरी में अंदर बैठ जाते थे माला फेरने के लिए। ये तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है, कितना मीठा से मीठा बाप है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, खुद दैवी गुण धारण करेंगे तो दूसरों को भी रास्ता बतला देंगे। कौन सा? देवता बनाने का रास्ता दूसरों को भी बतला सकेंगे। दूसरों को सिर्फ ज्ञान सुनाते रहे, रावण की तरह प्रकांड विद्वान बन गए वेद शास्त्रों को धारण करने वाले। बुद्ध रूपी हाथों में क्या दिखाया जाता है? रावण के सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान दिखाया हुआ है, लेकिन चलन कैसी? चलन आसुरी। तो दूसरों के ऊपर असर पड़ नहीं सकता, फिर भी वैश्यालय की दुनिया ही बनाएगा, शिवालय की दुनिया, देवताओं की दुनिया नहीं बना सकता। तो जब तक ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं किया, प्रैक्टिकल जीवन में सिर्फ तोते मिसल सुनना और दूसरों को सुनाना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बता सकेंगे। बाप जितना मीठा और कोई नहीं हो सकता। ऐसे बाप को पता नहीं क्यों नहीं याद करते हैं, क्यों नहीं याद करते हैं? बाप इतना मीठा, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते हैं? औरों को क्यों याद करते रहते हैं? जबकि देखते भी हैं हमको ये वर्षा मिलता है, बाप स्वर्ग का रहता है, तो हम बाप के बच्चे स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाप कहते हैं तुम बन सकते हो स्वर्ग के मालिक, परंतु बहुत प्यार से याद करो। है? वो प्यार से याद क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या? जानते भी हैं, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? क्या कहेंगे? बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना। 63 जन्म जिनका जिनका संग किया है उन्हीं की तो शूटिंग करेंगे। बुद्धि फिर भी वही फंसेगी जाके,
सारा ज्ञान बुद्धि में है, सब कुछ जानते हैं।